यानी ये जो इस पैटर्न पे अल्फाज आते हैं फाल के वजन पे, जैसे अरबी में आता है खब्बास, फाल के वजन पर बेकर को कहते हैं, द वन हु कीप्स ऑन कैरिंग एंड कीप्स ऑन कैरिंग एंड कीप्स ऑन कैरिंग, हम लता वो जो कॉन्स्टेंटली कैरी करेगी, यानी फाल के वजन पर अल्फाज जो आते हैं ना उसमें प्रोफेशन मेंशन किया जाता है। खब्बास कहते हैं द बेकर, तो अरब इस्तेमाल किया करते थे यही लफ्ज एज इट इज पूरे का पूरा, हम्मा लतल हतब एज अ स्लेव वुमेन, क्योंकि जो स्लेव वुमेन होती थी वो जाकर दूर जाकर कहीं आबादी से ड्राई लकड़ियां इकट्ठी करके लाती थी ताकि रात में उनको जलाकर रोशनी और गर्मी हासिल की जाए, बिकॉज सहरा में रातें ठंडी होती हैं। तो जो फायरवुड कैरी करके लड़कियां लाती थी एंशियंट अरेबियन पेनिनसुला में, उनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता था हम्मा लतल खतब। नाउ जस्ट फील हाउ उरवा बिन्त हर्ब विल बी फीलिंग जब उसने ये आयात सुनी होंगी कि उसकी बीवी वम्रातुहु हम्मा लतल खतब, वो जो बीनीथ द डिग्निटी समझती थी कि कोई उससे ऊंची आवाज में बात करे, कोई उससे स्टेटस से कम का उसके बराबर पर आकर बात करे, सोचें उसको कैसा महसूस हुआ होगा जब उसको एक स्लेव गर्ल के साथ मिलाया गया, कंपेयर किया गया। वो जो इलीट क्लास की थी, आला तबके से ताल्लुक रखने वाली थी, अल्लाह ने उसके फेस पर कह दिया, एक्चुअली तुम्हारी आखरत की पोजीशन इतनी लो होगी दैट यू विल बी लाइक अ स्लेव गर्ल। आप सोचें उसकी जिंदगी में उसके मुंह पर ये एक तमाचा था, चाहती तो ईमान ले आती, मगर वही बात वसुद्द अनिस सबी, जब इंसान हक को देख देख कर बार 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 रिजेक्ट करता रहता है तो फिर दिलों पर स्टैंप लग जाता है, दिल सील हो जाते हैं, दिल बंद हो जाते हैं। फाइन, तो ये एक उसका किरदार था जिसको यहां मेंशन किया गया कि अल्लाह ताला ने उसके लिए वही मेंशन कर दिया दुनिया में कि देखो तुम्हारी सजा बहुत सख्त होने वाली है। द लास्ट एक्सप्लेनेशन एक इस आयत 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से, बास स्कॉलर्स ने जिसको आप बलागा में इल्मुल बयान कहते हैं, इल्मुल बयान के जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि ये हम्मा लतल हतब जो है ये फिगुरेटिवली भी समझा जा सकता है, और फिगुरेटिवली इसको कैसे समझा जाएगा, वो कहते हैं कि ये कैसे आग को फायरवुड को कैरी करने वाली थी अपनी दुनिया की जिंदगी में। आपको याद है मैंने आपको अबू लहब के साथ भी फिगुरेटिवली मफहूम बताया था कि वो एनिमोसिटी की आग में दुनिया में भी जलता था, तो अल्लाह ताला ने उसको इस तरह से भी मेंशन किया और इस तरह से स्कॉलर्स ने उसको डिफाइन किया कि फिगुरेटिवली जो इंसान हासिद होता है वो दुनिया में भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरता रहता है। इन द सेम वे स्कॉलर्स ने यहाँ पर भी फिगुरेटिवली हम्मा लतल हतब को मेंशन किया। कैसे? वो कहते हैं इसकी उम्मे जमील की आदत थी कि ये दुनिया में खबरें यहां से वहां किया करती थी, गॉसिप्स किया करती थी, तकब्बुर था ना इसके अंदर, और ये जो तकब्बुर होता है ना ये तकब्बुर इंसान से बहुत लो स्टैंडर्ड काम कराता है। और मैं आपको बताऊं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई तकब्बुर इन आर पर्सनैलिटी एट अर्ली एज, वरना क्या होता है कि ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तकब्बुर की इंटेंसिटी और तकब्बुर के नुकसान बढ़ते जाते हैं। जस्ट फ्रॉम योर एंड माई चिल्ड्रन पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो अक्सर बच्चे कहते हैं ना मैं क्यों किचन में आके काम करूं, मासी से कहीं वो काम करे, किचन में मैं थोड़ी जाऊंगी, मेड्स जाती हैं किचन में। और जब माए कहती हैं बेटा कल को तुम अपने घर में जाओगी तो फिर किचन में नहीं जाओगी, मैं क्यों जाऊंगी किचन में, शेफ होगा किचन में, मेड्स होंगी किचन में, डोमेस्टिक स्टाफ होगा किचन में, कहने को बहुत मासूम सी बातें हैं बट दिस एटीट्यूड कैन डिवेलप एरोगेंस एट अ वेरी हायर स्टेज विद द पासिंग ईयर्स ऑफ दिस चाइल्ड लाइफ। तो बेहतर है इसको यहीं रोका जाए। बहुत बहुत आराम से बाज़ औक़ात बोल देते हैं ना लोग, मैं छोटी गाड़ी में कैसे बैठ सकती हूँ, इट्स बीनीथ माई डिग्निटी, मैं बस में कैसे ट्रैवल कर सकती हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है बस में ट्रैवल करने की, ओ मैं छोटे छोटे बाजारों से जो है वो ऐसे ही अनब्रांडेड रेप्लिका कपड़े क्यों लूँ, मैं तो सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ, मैं सिर्फ ब्रांडेड जूते पहनती हूँ, मैं सिर्फ ब्रांडेड बैग्स लेती हूँ। कहने को हम अपना लाइफस्टाइल डिफाइन कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम अपना तकब्बुर पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। और ये छोटी छोटी बातों पे अगर तकब्बुर को कंट्रोल ना किया जाए तो इंसान बड़े बड़े गुनाह कर लेता है। नाउ दिस इज द प्रैक्टिकल स्टेप जो हमें अपने आप को रोकना है और डायग्नोज करना है। उम्मे जमील ने अपना तकब्बुर डायग्नोज नहीं किया, बल्कि वो अपने तकब्बुर को पालती रही और अपने तकब्बुर को कॉन्स्टेंटली फ्यूल करने की वजह से उसकी आदत बन गई थी कि वो बड़े बड़े गुनाह करती थी। और बड़े बड़े गुनाहों में उसकी आदत थी कि वो इधर की बात उधर, या जिसको आप कहते हैं ना लगाई बुझाई करने वाली, तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी बड़ी र्यूमर्स फैलाया करती थी और इससे वो अपनी नफरत की आग में जलती थी। तो हम्मलतल खतब का मतलब एक ये भी है कि वो जो यहाँ से वहां लगाई बुझाई करती थी, गॉसिप्स करती थी, उसकी वजह से वो खुद भी तकलीफ का शिकार रहती थी, ट्रैश टॉक करती रहती थी, कंट्रोवर्सी फैलाने की कोशिश करती रहती थी, हर वक्त इस्लाम के लिए लोगों के दिलों में नफरत पंप किया करती थी। और ये ओपिनियन आपको कतादा मुफस्सिर कुरान, इकरिमा मुफस्सिर कुरान, मुजाहिद मुफस्सिर कुरान, सुफियान अस्सौरी मुफस्सिर कुरान, इन सब की किताबों में मिल जाती है कि कॉन्स्टेंटली इसकी आदत थी कि ये लोगों के दरमियान में गॉसिप्स के थ्रू नफरत डिवेलप करती थी। हम्मा लतल खतब को उन्होंने, खतब को उन्होंने इडियोमेटिकली लिया है। और सईद इब्ने जुबैर भी यही लिखते हैं कि वो अपने इस अमल की वजह से अपने गुनाहों का बोझ कैरी करने वाली है, गुनाहों का बोझ उठाने वाली है। उन्होंने क्यों इसलिए कहा कि अरब का मुहावरा था फुलानुन यहतिबु अला वहरिही, फलां शख्स अपनी बैग पर लकड़ियां उठाता है, यानी वो इसको मिलाते थे कि गुनाहों के बोझ से इंसान अपनी कमर को झुका ले। तो ये उम्मे जमील की आदत थी नफरतें फैलाना। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, स्कॉलर्स कहते हैं उम्मे जमील को सजा मिली बिकॉज उसने अपने हस्बैंड का गलत कामों में साथ दिया। उम्मे जमील के लिए सजा सूरत लहाब में मेंशन की गई इसलिए कि वो फिजिकली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर्ट करने की कोशिश करती थी, आपके रास्ते में कांटे बिछाती थी। उम्मे जमील को सजा दी गई बिकॉज शी वॉज वेरी फेमस फॉर नमीमा। नमीमा नून मीम या मीम गोलता, नमीमा इज अ ग्रेट सिन इन इस्लाम। यू कैन से नमीमा इज अ कबीरा गुनाह इन इस्लाम। नाउ व्हाट इज नमीमा? इससे पहले कि मैं नमीमा आपको बताऊं क्या होता है, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है। एक मर्तबा रसूलल्लाह दो कब्रों के पास से गुजरे, आपके साथ सहाबा थे, आपने सहाबा से फरमाया कि अगर तुम सुन सको कि इन कब्रों को किस वजह से सजा मिल रही है तो मैं तुमको वजह बताता हूँ। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह किस वजह से इन कब्र वालों को सजा मिल रही है? रसूलल्लाह ने कहा, इसलिए कि इनमें से एक का मसला ये था कि वो दुनिया में अपने आप को कॉल ऑफ नेचर के बाद प्रॉपरली क्लीन नहीं करता था, यानी उसका तहारत का इशू था। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी हदीस को सुनते सुनते हम ये भी सीख जाएं कि अपने बच्चों को सिखाएं कि जब वो वॉशरूम में जाएं तो उन्होंने कैसे अपने आप को प्रॉपरली क्लीन करना है, कॉल ऑफ नेचर के बाद अपनी तहारत कैसे हासिल करनी है, किस तरह से जो है वो बेटों को आपने सिखाना है कि वो वॉशरूम जाएंगे तो उन्होंने किस तरह से प्रॉपरली अपने आप को इस कॉल ऑफ नेचर से फारिग करना है, क्या काम नहीं करना जिससे नापाकी फैल जाएगी। बेटियों को सिखाना है कि उनको किस तरह से ये काम करना है। वरना याद रखें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मफहूम के मुताबिक एक कब्र वाले को सजा मिल रही थी, सहाबा को आवाज नहीं आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह हर इंसान को कब्र की सजा से और जहन्नम की सजा से महफूज रखे। आपकी हदीस के मफहूम के मुताबिक जब किसी कब्र को सजा, कब्र वाले को सजा मिलती है तो इंसान के अलावा तमाम मखलूकात सुनते हैं, तमाम मखलूकात। तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के हुक्म से आवाज आई जिस पर आपने अपने सहाबा को तालीम देने के लिए कहा कि इस कब्र वाले को, एक की तरफ आपने इशारा करके कहा कि इसको सजा मिल रही है बिकॉज ये प्रॉपरली अपने आप को कॉल ऑफ नेचर के बाद क्लीन नहीं करता था, यानी इम्प्योर रह जाता था। और दूसरा आपने बताया कि दूसरी कब्र में इसलिए सजा हो रही है कि ये दूसरी कबर वाला नमीमा फैलाता था, नमीमा करने वाला था. द इजिएस्ट वर्ड विच आई कैन टेल रिलेटेड टू नमीमा इन उर्दू इज द चुगली, जिसको आप कहते हैं लगाई बुझाई करने वाले. एंड उर्दू का वर्ड यू कैन आस्क फ्रॉम योर नानी एंड दादी एंड अम्मी, द बी जमालो पार्ट. द बी जमालो पार्ट इज जिसमें आप इधर की बात उधर लगाते हैं और उसमें सच्चाई नहीं होती है. तो आपने फरमाया कि दूसरी कब्र को जिसको सजा मिल रही है, इसमें जो शख्स है उसकी आदत थी कि वो दुनिया में नमीमा करता था. नमीमा और गीबत, इन दोनों में फर्क है. अगर मैं बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊं, गीबत वो होती है कि जो आप किसी इंसान के बारे में कहें जो उसके अंदर बुराई मौजूद है, और वो बुराई आप उसके सामने ना कहें बल्कि आप उसकी बैक पर किसी थर्ड पर्सन से कहें. द पॉइंट इज जो बुराई उसमें मौजूद है. बट याद रखें, गीबत जरूरी नहीं होता इंसान नफरत में करे. गीबत इंसान दुख में कर सकता है, गीबत इंसान किसी की नाइंसाफी पर कर सकता है, गीबत इंसान करता है जो इंसान में बुराई होती है वो दूसरे को जाके बता देता है. दिस इज गीबत. जरूरी नहीं है इसमें आप नफरत के साथ गीबत करें. बट वॉट इज नमीमा, वॉट इज चुगली? नमीमा इज द थिंग जिसमें कहते हैं कि जो आउट ऑफ नफरत, आउट ऑफ दुश्मनी किया जाता है और दूसरे को नुकसान पहुंचाने की नीयत से किया जाता है. यानी आप किसी थर्ड पर्सन के पास जाएं और जिस इंसान की नफरत में आप बोल रहे हैं, आप उस इंसान की के और इसके दरमियान में झगड़ा कराना चाहें, और आउट ऑफ हेट आप ये बात करें. और आप जैसे अल्लाह ना करे कोई आए खातून और दूसरी से कहें, तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में इतनी बुरी बुरी बातें कर रही थी, तुम्हें पता है कह रही थी तोबा तोबा, कितना वजन बढ़ गया है, कितना झूठ बोलती हैं. दिस इज चुगली, दिस इज नमीमा, दिस इज अ कबीरा गुना इन इस्लाम. बाय द वे, गीबत इज ऑल्सो अ कबीरा गुना इन इस्लाम. बट नमीमा होता है वेन समवन ट्राइज टू क्रिएट फ्रिक्शन, वेन समवन ट्राइज टू क्रिएट एनिमोसिटी बिटवीन टू पीपल. ये काम था उम्मे जमील का. और याद रखें, इस नमीमा के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि एक इंसान को कब्र में सजा मिल रही थी. अल्लाह ताला हम सब को अपनी इस्लाह करने वाला बनाए. अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हमें आपकी मदद और हमें आपकी तौफीक चाहिए ताकि हम कभी भी किसी भी इस तरह की मॉरल वाइस के अंदर, मॉरल बुराई के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व ना करें. तो ये तीसरा जुर्म था, तीसरा क्राइम था उम्मे जमील का, कि जिसकी वजह से उसके नाम को यहाँ सजा के साथ मेंशन किया गया. ये फितना फैलाती थी और अपनी दुश्मनी को और रसूलुल्लाह और इस्लाम से दुश्मनी को इस तरह से आगे बयान किया करती थी. ये आया नंबर 4 थी. वम्रअतुहु हम्मालतल हतब. हतब कहते हैं, द फाइनल एक्सप्लेनेशन ऑफ आया नंबर 4, हतब कहते हैं ड्राई लकड़ी को जो बहुत तेजी से आग पकड़ लेती है. और यही लकड़ी होती है हतब, जिसको आप जब आग में डालते हैं तो आग का कलर रेड हो जाता है. अगर आपने कभी बॉनफायर किया हो तो बॉनफायर में आप जितनी ड्राई वुड डालेंगे उतना बॉनफायर का जो फ्लेम है वो रेडिश फ्लेम बनता है. सो हम्मालतल हतब स्पेसिफिकली ये वो लकड़ी उठाने वाली, वो लकड़ी गैदर करने वाली है जो फ्लेम को रेड कर देगी. और द रेडिश द फ्लेम, द हॉटेस्ट द टेम्परेचर विल बी. दिस इज द साइंस. द ब्लूइश द फ्लेम, द लाइटर द टेम्परेचर विल बी. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फ्लेम्स, बिटवीन द ब्लूइश फ्लेम एंड द रेडिश फ्लेम. रेडिश फ्लेम का टेम्परेचर ज्यादा होता है. अबू लहब जो कि कॉम्प्लेक्शन में रेडिश था, उसका एसोसिएशन कुरान ने जो बदला आग के साथ, वो उस बदला गया, उस आग में अब वो रहेगा जो रेडिश होगी. और उस आग को रेडिश करने वाली, उस आग के लिए फ्यूल लाने वाली उसकी अपनी बीवी होगी, जो ड्राई लकड़ियां लाएगी हतब वाली और उसके फ्यूल को बढ़ाएगी, खुद भी जलेगी और अपने शौहर को भी जलाएगी. आया नंबर 5, द फाइनल आया ऑफ सूरतुल मसद. इसकी अबू लहब की बीवी का ही जिक्र चल रहा है. फी जी दिहा. हा इज टेलिंग अस कि उम्मे जमील की बात है, बिकॉज दिस इज फेमिनिन प्रोनाउन. फी जी दिहा, उसकी गर्दन में, हबलुम मिम मसद, एक रस्सी होगी मोटी सी जो कि ट्विस्टेड होगी. उम्मे जमील की गर्दन में एक रस्सी होगी जो कि ट्विस्टेड होगी. द एक्सप्लेनेशन नंबर 1, जो यहाँ लफ्ज आया है जी दी, जी दिन, जीम या दाल, ये आता है गर्दन के लिए, एंड अ वेरी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द गर्दन इन अरबिक लैंग्वेज। गर्दन का वो हिस्सा जो बिलो द चिन से लेकर आपके कॉलर बोन तक आता है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द गर्दन जिसमें आप देखेंगे जहां पर खवातीन अपने ऑर्नामेंट्स, अपनी ज्वेलरी, अपना जेवर पहनते हैं। तो आम गर्दन की बात नहीं है, खास तौर पर जीद कहा जाता है एक ऐसी गर्दन जो स्टार्ट होगी बिलो द चिन टिल द कॉलर बोन, और एक पैसे वाली औरत की गर्दन। Why I'm saying पैसे वाली औरत की गर्दन? Because जीद का लफ्ज अरब यूज किया करते थे एक ऐसी वेल्दी वुमेन के लिए जिसकी गले में हर वक्त ज्वेलरी रहती है, जो हर वक्त ज्वेलरी पहने रहे, ऑर्नामेंट्स पहने रहे, कीमती हार पहने। आपको बताया था, इफ यू रिमेम्बर, उम्मे जमील के गले में हमेशा एक बहुत ही प्रेशियस नेकलेस होता था, और जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखती थी तो अपने इसी नेकलेस को पकड़ के कहा करती थी कि लात और उज्जा की कसम, मैं अपना आखिरी पोजीशन भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरत में स्पेंड कर दूंगी, यानी इनके मिशन को कामयाब नहीं होने दूंगी। तो जो चीज दुनिया में उसकी प्राइड थी, कयामत के दिन वही चीज उसकी सजा का बायस बन जाएगी। Now take this on a very serious note for our inspiration, for our day-to-day life. दुनिया की किसी नेमत को भी, किसी नेमत को भी, चाहे वो एक छोटी सी आपके हाथ में रिंग है, चाहे वो छोटा सा ब्रेसलेट है, चाहे आपकी आंख है, चाहे आपके कानों में से एक कान है, चाहे आपकी एक फिंगर है, एक फिंगर, जिंदगी में कोई भी नेमत अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना वही नेमत कयामत के दिन हमारी सजा का बायस बन जाएगी। हर आयत आपको और मुझे पुकार पुकार कर सबक लेने की तरफ बुलाती है। ये जिंदा कलाम है और ये जिंदा लोगों को ही समझ आता है, जो कहे कि मुझे तो कुरान में आज के लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलती, मुझे तो कुरान जो है वो 1450 साल पुरानी बात लगता है, जो कहे कि मेरे लिए तो कुरान जो है वो कोई नई इंस्पिरेशन 21st सेंचुरी की नहीं लेकर आ रहा। वी मस्ट से एंड वी विल से व्हाट आवर प्रॉफिट हैड सेड, व्हाट आवर स्कॉलर्स हैड सेड, वी मस्ट से उस इंसान के अंदर जिंदगी नहीं है, उस इंसान की रूह जिंदा नहीं है, वरना ये जिंदा किताब है और जिंदा लोगों से ये कनेक्शन डिवेलप कर लेती है। सो हर आयत में लेसन है। इस आयत में लेसन क्या है? जो गर्दन की ज्वेलरी उसकी प्राइड थी, क्योंकि उसने उसको अल्लाह की नाफरमानी में और रसूल की नाफरमानी में इस्तेमाल किया, तो वही प्राइड आखिरत में उसकी सजा बन गई। आज हमारी जितनी भी दुनिया में प्राइड है, हमारी नेमतें, हमारा घर, हमारी खूबसूरती, हमारा बैंक बैलेंस, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के क्रेडेंशियल्स, हमारे बच्चों के बच्चे, हमारे बच्चों की खूबसूरतियाँ, हमारे बच्चों की डिग्रीज, हमारे हस्बैंड्स के कारोबार, हमारे हस्बैंड्स के बिजनेस, उनकी जॉब्स, यू कैन नेम द लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव एज अ ब्लेसिंग। जिस जिस चीज को सोच के आपकी गर्दन थोड़ी सी अकड़ जाती है, उन सब चीजों को अल्लाह की फरमाबरदारी में इस्तेमाल करें। फॉर सम पीपल देयर एक्सेंट, आई स्पीक फ्लुएंटली इन दिस 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 एक्सेंट, और फिर लोग उनको एडमायर करते हैं, आपका एक्सेंट कितना अच्छा है। हर इंसान की जो नेमत है, आपका बोलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी चॉइसेस, आपका लाइफस्टाइल, किसी भी नेमत को, ये सब नेमतें हैं, किसी भी नेमत को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल ना करें, वरना यही नेमतें आखिरत में अल्लाह ना करे सजा का बायस बन जाएंगी, जो उम्मे जमील के साथ हुआ। सो फी जी दिहा, उसकी गर्दन में, उसी गर्दन में जिस गर्दन में उसकी प्राइड, उसका प्रेशियस नेकलेस था, हबलुन, रस्सी होगी। हबल कहते हैं, इट्स नॉट जस्ट हबल, किसी छोटी सी रोप को नहीं कहते हैं, जूट की रस्सी को नहीं कहते, हबल अरबी जुबान में कहा जाता था बहुत मजबूत, बहुत ज्यादा मोटी रस्सी को। और ये जो आगे मिम मसद आया है, इसकी स्कॉलर्स ने डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस किए हैं, वो कहते हैं मसद जो है वो ऐसी रस्सी भी हो सकती है जो खजूर के ड्राई पत्तों को एक दूसरे के साथ जो है वो वीव करके बनाई गई हो। मसद जो है वो रस्सी भी हो सकती है जो कि बहुत मोटे जूट को लेकर उसके कई लेयर्स बना बनाकर बनाई गई हो, और मसद वो रस्सी भी हो सकती है जो लोहे की वायर्स को इकट्ठा करके बनाई गई हो। अरब इस्तेमाल किया करते थे मसद नाम की रस्सी को कुओं में डालने के लिए, बिकॉज वहां सहरा था, तो जब कुआं वेल पानी हासिल करने के लिए खोदा जाता था तो बहुत डीप इन द ग्राउंड होता था, और जब वहां से बाल्टी को ऊपर पुल करना होता था तो उसके लिए उनको बड़ी हैवी मोटी रस्सी चाहिए होती थी लिवर से बांधने के लिए। तो मसद कहा करते थे ऐसी रस्सी को जिस रस्सी को वो हैवी पानी की बकेट को पुल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अल्लाह ने कहा कि ये जो उम्मे जमील है इसकी गर्दन में एक मोटी रस्सी होगी, वो गर्दन जिसको ये सजाती थी और वो गर्दन जिसमें ये ज्वेलरी पहना करती थी, कयामत के दिन वही गर्दन और वही हार इसके लिए जो है वो सजा बन जाएगा। पाम फाइबर की रोप होगी बहुत मोटी सी, क्यों? इसलिए कि ये रसूल अल्लाह की दुश्मनी में, इसी गर्दन के अंदर साउंड बॉक्स भी तो होता है आपका। अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन डन बाय अ स्कॉलर, ही सेड के इसी गर्दन में जहां ज्वेलरी उसने पहनी है, इसी बिलो द चिन से लेकर कॉलर बोन तक आपका साउंड बॉक्स भी तो होता है, एडम्स एप्पल। आवाज भी तो यहीं से आती है, बड़ी आवाज निकलती थी रसूल अल्लाह की दुश्मनी में, बड़ी बातें आती थी, बड़ी सोफिस्टिकेटेड पोइट्री करनी आती थी इस्लाम के खिलाफ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। अब अल्लाह ऐसी रस्सी डालेगा कि ऐसा चोक करेगा कि यहाँ कोई आवाज नहीं निकलेगी। रोजे महशर किसकी हिम्मत होगी अल्लाह के सामने बोलने की, वो जिनकी जुबानें गफलत में, दिल नहीं चाहता ये कहते हुए कि जानते हुए अल्लाह से उम्मीद है और दिल से दुआ है कि अल्लाह हर उस जबान को हिदायत का रास्ता दिखा दे जो आज जाने अनजाने में इस्लाम के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं।